एक रात में तो ब्रह्मा की रात्रि ही मिलकर के ना जाने कितनी रात हो गई, इसके अतिरिक्त भी कितनी रातें हम लोगों की। रात का क्यों लिया ना, दिन में क्यों नहीं लिया, दिन में मिलन जरा संभव। सखाओ सखा है, माता पिता है और लोग हैं, गोचार नित्यादि, बस इस समय में उनको रात के लिए कारण है। रास की रात्रि ब्रह्म रात्रि के परिमाण में होने पर भी रास क्रीड़ा इत्यादि परमानंदों स्वरूप होने के कारण एक क्षण भी नहीं लगा वो बीत गई रात। पुनः पुनरंग, पुनरंग माने पुनः, वाक्य के वाक्य का अलंकार था पश्चात अर्थ करे। अब पुनः वही रातें जो आनंद में एक क्षण में बीत जाती थी, अब वही रातें उसका एक एक क्षण एक एक कल्प के समान में व्यतीत नहीं होती हैं। वो रातें कैसे कहा नहीं जा सकती, क्योंकि प्रेष्ठ मिलन में ब्रसुंदरियों के संबंध में ब्रह्मरात्रि और एक क्षण के मात्र में बीत जाती है। और प्रेष्ठ के विरह में क्षण काल भी ब्रह्मरात्रि के समान सुदीर्घ हो रहा था, इसको वचन के द्वारा इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता और न कोई समझ सकता है। समझेगा कौन, जिसको किसी प्रकार से किसी प्रेम में अनुभूति है, दिल व मंगल कुछ कुछ समझ सकते हैं। क्यों, उसका प्रेम और ममत्व था उनसे चिंतामणि से, जब छोड़ा होगा ना तो हृदय में कैसी भावना हुई होगी। अथवा कोई व्यक्ति संसार में खूब उसका प्रिय हो, जब चैतन्य महाप्रभु छोड़ रहे हैं मैया को और कौन विष्णु प्रिया जी को सो रही हैं पलंग पर विष्णु प्रिया जी, और महाप्रभु उनके साथ में थे और अभी तक तो कुछ मालूम नहीं हो रहा था जी, किंतु जब छोड़ करके एक पैर बढ़ाया, जब मान ले किसी खाट से उतरे पलंग से उतरे हुए और ऐसे देख करके इधर चल रहे हैं और इधर देखे होंगे, तो बतलाओ उस समय उनके मन में कैसी कैसी चीजें आएंगी। वहां पर एक कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम था, विरथा, इसलिए वो चले आए, और दूसरा कोई संसारी होता तो आ जाता, ये संभव था, छोड़ते हुए चले जा रहे हैं कैसे कैसे। रास्ते में मैया खड़ी है, मैया ने सारा जीवन उनका पालन पोषण किया, काठ की पुतली बनी हुई वहीं पर खड़ी है और महाप्रभु जी के आंखों में आंसू निकल रहे हैं, वहां से तो पार होकर के आए और देखा ये खड़ी है। यदि कुछ कहती तो कुछ बात भी, कुछ नहीं कहा, आंखों के आंसू भी सूख गए हैं, चुपचाप काठ की पुतली की भांति तो खड़ी है। और महाप्रभु जी ने उनकी परिक्रमा की, उनको स्वप्न मालूम हो रहा है ना जी, क्या मालूम हो रहा है, कुछ समझ नहीं सके, परिक्रमा किया, उनको प्रणाम किया, दूर से पैर नहीं छुआ। आज जिस समय में वो चले गए धर्म से गिर गए, न जाने कितने देर के बाद जब होश आया, सब लोग आए देखा, देख करके वो प्रतीक इत्यादि लिया, चारों तरफ में खोजने लगे, फिर मैया डकट डकट के सब रोने लगे। अब उस समय उनको होता कि मैंने क्यों नहीं उसको पकड़ लिया, तो ये क्यों होता है, जिसको जितना ही ममता जिस वस्तु से होगी उतना ही वियोग होगा, अब ममता है ही नहीं है एकदम, तो वियोग आएगा कहां से। इसलिए भक्त लोग सुन करके रोने कलपने लगते हैं, हृदय में अनुभूति करते हैं, हम लोग पर नहीं पाते, क्योंकि वैसा न तो साधन भजन है, न आसक्ति है, न वो भगवान के प्रति ममता है, कुछ है नहीं। कितना हो गया? यहाँ पर सनातन गोस्वामी एक चीज कह रहे हैं, जो कोई कहते हैं कि एक एक रात्रि खनार्ध हुई थी, यह बात ठीक नहीं। रात्रि माप के द्वारा, समय के द्वारा, वह ब्रह्मा की रात्रि एक क्षण नहीं बन गई, वो तो
प्रतीत हुआ,
वो तो पूरी की पूरी रही लंबी। जैसे एक दिन में 12 घंटे, रात में 12 घंटे, 24 घंटे, और 24 घंटा इंटू 365, ये एक वर्ष हुआ ना? और ऐसे ही करते 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 ब्रह्मा की रात्रि पूरा, वो रात्रि पूरी चली, वो रात्रि क्षण भर नहीं बन गई किंतु अनुभूत हुई क्षण। कुछ लोग ऐसे व्याख्या करते हैं, किंतु यह गलत है। इसलिए सभी रात्रि को मत समझना, केवल शरद की जो रात्रि थी, पूर्णिमा की रात्रि, शरद पूर्णिमा की, बस वही उसी को समझना, और सब दूसरे रात्रों के लिए मत समझना। अच्छा, दूसरे दिन बतलाऊंगा बंचा। त्रिप्राधयो अन्नम ददुषु न सुखाय। जब मैं राम के सहित अक्रूर के द्वारा जब मथुरा लाया गया, तो मेरे वियोग ने मेरे अतिरिक्त उनके सुख के लिए कुछ भी कोई आधार नहीं रहा। पहले तो कृष्ण की तो सखियां थी, राधा जी की तो सहेलियां थी परस्पर, किंतु वो भी अब उस समय परस्पर सुख के आधार नहीं बन सके। सभी लोग विरस में थे, किंतु ये बतला रहे हैं एक चीज, दंतवत वध के बाद में कृष्ण वहां आए, 2 महीना रहे, फिर उनकी आधी व्याधि इस विरह की नहीं रही। क्यों नहीं रही? इसलिए दो महीना के बाद में अप्रकट लीला हो गई। अप्रकट लीला में विरह की अनुभूति ऐसे नहीं हुई। फिर तो उस समय में केवल भावना का कुछ रहता है, इतना लंबा प्रवास कृष्ण का नहीं होता। इसलिए ये कहें कि अब विच्छेद इतना नहीं घटा, इसलिए उनका वो सब भाव भी दूर हो गया। 2 महीने के बाद ही प्रकट लीला कृष्ण करके अपने सब लोगों को साथ लेकर के चले, और फिर एक प्रकाश में कल बतलाया था जब द्वारका चले गए, वहां पर कुछ दिन रहने के बाद ही में फिर वहां पर भी जदवंशियों का ध्वंस की लीला ऊपर से दिखला करके और सब लोगों को लेकर के अप्रकट लीला में प्रवेश किया। और उसमें जो अवतार के उनके जो अंश थे, और या जो उनके परिकरों में जो अंश थे स्वर्ग इत्यादि के, या और नारायण वैकुंठ इत्यादि के, उन सबको भेज दिए, वो लोग चले गए अपने अपने स्थान। कृष्ण के अंदर में जो नारायण थे वो चले गए, कृष्ण के अंदर में वामन थे वो लोग चले गए, और कृष्ण तो ही प्रकृति बन रहा है। पास्ता छपा प्रेष्ट तमेन नीता मैव वृंदावन गोचर खनाद भवत्ता पुनरंग ताशा बिना माया कल्प समाप्त हुआ। इसका तो पढ़ दिया था, हो गया था ना?
नहीं, कल शुरू क्यों हुआ? शुरुआत
नहीं हुआ। पास्ता छपा परिष्ट अर्थ में नीता वृंदावन में गोचारण के समय में हमार सहित मिलिया मिलित है से सही जाति सकल खनाकर सुखे अतिवाहित वृंदावन में हमसे ये रात में जो मिली गोपियां वो ब्रह्मा की रात्रि भी मानो आधे खंड के समान दिख रही और मेरे विरह में वो रात का कटना भी बड़ा भारी कठिन हो गया। आधा क्षण भी अब
कल्प सद्धि से
कल्प और मिलन में कोटि कोटि ब्रह्म रात्रियां भी
और
एक क्षण में ही वो दिख रही। इसी को ये बतला रहे हैं, ये सब प्रेम के ऊपर में निर्भर है। जिसको प्रेम और प्रेम में महत्व होता है वो यदि होगा तो ये ऐसा हो सकता है, जिसमें प्रेम नहीं है वो अनुभव नहीं कर सकता। हे अंग पुनरंग अंग मन जैसे हमारा अंग प्रिय है वैसे ही तुम हमारे प्रिय हो। उद्धव जी को कहा यहाँ पर ये मत समझो कि ये मथुरा की नागरियां कह रहे हैं जहाँ से ये आरंभ किया
न पा रहे हैं।
इसके बाद में
गच्छ व्रजन सुन
ये यहाँ पर वो कह रहे हैं कृष्ण कह रहे हैं तुमसे ये भी उन्हीं से कह रहे हैं। हे अंग हे मेरे अंग के समान प्रिय उद्धव बहुत सी रात्रों में मैं उनके साथ में था और मैंने उपलब्धि किया है कि वो सब रातें मिलन में क्षण में वो बीत जाती है और पुनः वही रातें और वही क्षण एक एक क्षण मानो कोटि कोटि कल्प के समान वो बीतती नहीं। हमारे विरह में ये सब रातें कटती नहीं। साधन स्थिति में इसका कुछ आभास हो सकता है। चैतन्य महाप्रभु के जीवन में हम देखें उनकी रात कटती नहीं थी। राय रामानंद इत्यादि के साथ में नाक घिसते रहते रोते रहते और रात ही नहीं बीती थी। ऐसे ही यदि कोई साधक हो साधक को नींद आएगी कि नहीं? जो आराम से खाता पीता और सोता है वो साधक ही नहीं, उनको कोई चिंता ही नहीं। बेकार के लिए घर बार स्वास बेकार सब बेकार। उनको अपने पेट भरण अपने प्रतिष्ठा लालसा और ये सब की ही चिंता लगी रहती है और उन लोगों को चिंता लगी रहती है कृष्ण की। महाप्रभु जी का जीवन आदर्श है इसलिए ये खम और भक्त में और कल्प मायत्व में एक क्षण का एक कल्प हो जाना आइया कल्प को खनत्व समझना,
मिलन में कल्प
ये सब कृष्ण के प्रेम के ऊपर में निर्भर है। यदि गोपियों जैसा प्रेम होगा तो ऐसा होगा, अन्यथा नहीं होगा। यहाँ पर चार पहर का दीवा और चार पहर का तीरा, ये आठ प्रहर होता है। चार प्रहर की रात में और चार पहर का, ये आठ याम काला है। अष्टदा अष्ट प्रहर का कीर्तन, अष्ट प्रहर का ये सब होता अनुष्ठान। ये राष्ट्रीय दिन और रात लगातार कल्प तक चला, तो और लोग क्या किए, और लोग किया क्या, योग माया के प्रभाव से उनको मालूम ही नहीं हुआ, तो दिन रात चलता रहा। और इन लोगों के लिए उतना ही एक कल्प तक रहा। इसके द्वारा भगवत संग की ये महिमा है, भगवत संग से ऐसा ही हो। यदि किसी साधक को भी हो, बिना भाव हुए तो ये होगा नहीं। जब किसी को भाव हो जाएगा तो कुछ कुछ अनुभव आभास कर सकता है उसमें। अब वे जो रात्रि है कौन सी, जिसमें रास हुआ था, जिस समय में शारदीय रात आती है, शारदीय पूर्णिमा की, उस समय गोपियों को विरह बेसी दुख होता है कृष्ण के विरह में। क्यों होता है,
याद आती है,
उनको याद आती है, उसकी स्मरण होती है जो वो हमारे साथ में ऐसी सुंदर रूप में रास क्रीड़ा किया और हमारे लिए पसीने पूछ दिए, हमारे पैरों को दबाया, हमारी क्लांति को दूर किया, और उनकी सब पर वार्तालाप संलाप ये सब याद आ करके उनके लिए बड़ा भारी विरह पैदा कर रहा। जो सुख का कारण होता है वही स्मरण होने पर जब उसके विरह में दुख का कारण बन जाता है। जिस गुरु जी के साथ में सेवा करते हुए इतना आनंद आता है, अब वही सब सेवा की का दिन स्मरण करके उनके विरह में जसोदा जी कृष्ण एक खिलौने के लिए मचल गए। जसोदा जी कृष्ण को ठगने की बहुत सी चेष्टा की किंतु ठग न सके, जैसे तैसे उनको कृष्ण को घड़े में चांद दिखाई दिया, मैं लूंगा मचल गए। उन्होंने कहा जैसे वो घड़े में, अच्छा मैं निकाल करके देखो, एक सखी को कह करके उसमें मक्खन डलवा दिया। और कृष्ण कहा देखो तो घर में वो कौन आया, इधर देखने लगे इतने मक्खन डलवा दिया। इसके बाद में कृष्ण इधर देखने तो मक्खन निकाल लो वो चांद, तो खाने लगे बड़े प्रेम के साथ। फिर उन्होंने झाँक करके देखा तो वही चांद, और फिर रोने लगे, खाना वो फेंक दिया मक्खन का, हमको ये बाला रहे। फिर उन्होंने कहा अच्छा देखो चांद तो है ठीक, तुमसे खेलेगा भी, किंतु उसे खेलना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें विष है। विष कहाँ से आ गया, विष ऐसे आ गया समुद्र में मंथन हो रहा था, बड़ी अद्भुत चीज निकली। माँ समुद्र को किसने मथा, बाल्य प्रश्न हो रहे हैं। उन्होंने कहा एक तरफ में देवता एक तरफ में दानव, तो उसमें पहले विष निकला, फलाहों को शंकर जी ने पी लिया बोलने लगे। इसके बाद में फिर ये निकला, मक्खन निकला, तो इसमें उसके छींके पड़ गए थे, इसलिए उसके साथ उसको न तो खाना चाहिए ना उसके साथ में खेलना चाहिए,
चांद निकला,
इसलिए उसका उसमें आ गया। ऐसे करते करते थप्पी और लोरी करते 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 अब जब चांद निकलती निकलता है और यशोदा जी देखती हैं और कृष्ण चले गए हैं मथुरा, वही उनके शोक का कारण हो गया। जो जो लीलाओं से वो उनको प्रसन्न किया, कृष्ण प्रसन्न होते थे, ये प्रसन्न होते, मुरली को देखा और विरह में रोने लग गए, तड़फड़ाने लग गए। इसलिए गोपियों की वो सब बातें याद आती हैं, रास की एक एक बातें, रास पूर्णिमा इत्यादि, और विरह में संतप्त हो जाती हैं। ये जो होता है उद्धव, ये अंग, इसका कारण, मूल कारण है हमारे प्रति उनकी प्रीति, और इसका कारण मैं ही हूं, मैं उनका प्रेष्ठतम हूं। मत विषय प्रेम भरे, प्रेम से उनकी ऐसी विरह, उनका ऐसा विरह हुआ करता है। हम लोग तो अपने पर विचार करना चाहिए इन सब चीजों का। हम लोग जिसके लिए आए, किस लिए घर छोड़ा? खाने पीने के लिए तो कोई नहीं छोड़ा, आराम के लिए तो कोई नहीं छोड़ा, किस लिए छोड़ा? कृष्ण के लिए ही तो छोड़ा, भगवान के लिए छोड़ा। और हम लोग भगवान के लिए तनिक भी कोई चिंता नहीं, किसके लिए चिंता? अपनी प्रतिष्ठा, अपना आराम, अपना विचार लेकर के बस चिंता, कृष्ण के लिए कुछ भी नहीं है। कृष्ण अभी तक नहीं मिले, उनकी सेवा नहीं मिली, अब उसकी सेवा देने वाले जो वैष्णव और गुरु हैं उनकी भी सेवा में हम तनिक भी कोई रुचि नहीं। गुरु सेवा किसको कहते हैं? गुरु सेवकों से सीखना चाहिए, गुरु सेवक। इसीलिए कहा गया गुरु सेवक है मन अपना, अपने मन में कैसे सेवा की जाए। उनको भी बिना गुरु के दिए हुए चीज को वो मूल्यवान समझ, जिनको कुछ मिला ही नहीं और जिन्हें कुछ अनुभव ही नहीं किया, तो वो क्या गुरु को सेवा करें या वो किसी की सेवा करने को सकते, उनको अनुभूति ही नहीं है। और जिनको अनुभूति है ना, वो प्राण दे देंगे उसी के बदले। इसलिए कहते हैं वो बड़े आश्चर्य की बात है, हे जगतपति, आप पर दुख कातर होकर के किस लिए? आप यहां पर सबको, उद्धव जी ने कहा आप उन गोपियों को यहां पर क्यों नहीं बुलाते? इतने रो रहे हैं फिर बुला रहे हैं यहाँ पर, वहां पर द्वारका में 16,000 महिषियां हैं, 16,108, तो और ये 16,108 आ जाएंगे तो इनके लिए महल क्या नहीं बन सकते? सभी कुछ यहाँ पर हो जाएंगे, आप उनको बुला क्यों नहीं देते? बड़े आश्चर्य की बात है, इतना रोना छटपटाना, उनको संतना तो मिलेगी नहीं मेरे जाने से, इसलिए आप को उचित यही है कि वहीं पर आप बुला। बुलाने से क्या होगा? फूल अपने वृंत में ही पुष्पित और सुरभित रहता है, उसमें सुगंध होती है, और फूल को तोड़ लो वृंत से, वृंत माने उसकी डाली से, तो फिर वो सुगंध और वो उसकी जो प्रस्फुटित होता है अवस्था फूल की, वो मुरझा जाएगा,
सौरभ सुकुमार
ये सब नष्ट हो। गोपियां वृंदावन में ही सुशोभित, मथुरा द्वारका में वो मुरझा जाएंगे, उनका सौरभ ही चला जाएगा, इसलिए वहीं पर रहना अच्छा है। यदि मुझे जाना है तो मुझे ही वहां जाना है, उसको नहीं जाना है। इसलिए माता पिता सखियां सखा सब को छोड़ करके नहीं जा सकते। यदि वो छोड़ दें तो वृंदावन ही क्या है, इसलिए वो वृंदावन में ही वो रहेंगे। वृंदावन ही है वो, वही वृंदावन। गोपियों को वृंदावन से हटा दिया जाए तो फिर वृंदावन रह जाएगा? वृंदावन रहेगा ही नहीं। भगवान कह रहे हैं वृंदावन गोचारण मय वृंदावन गोचारण, वृंदावन निवास पूर्वक, वृंदावन में विहार उपयोगी वेश व्यति व क्रीड़ा और उनका सार विलास ये संभव पर नहीं है, वो वृंदावन में ही संभव है, इसलिए मैं उनको नहीं लाता, नहीं लाता। यदि जसोदा को ले आएंगे मान लिया, और मैया को और पिताजी को द्वारका में ले आए, उस समय में देखेंगे जैसे ये वसुदेव और देवकी जो राज रानी और महाराज हैं, कृष्ण की वहां पर कोई भी लीला हो सकेगी? उस रूप में वृंदावन जैसी नहीं है। उन महारानी पटरानियों में वहां पर इनका रास इत्यादि संभव कुछ भी नहीं हो सकेगा, इसलिए उनको नहीं बुलाए। माधुर्य को ऐश्वर्य में नहीं लाया जा सकता, और ना ऐश्वर्य को माधुर्य भूमि में लाया जा सकता है। गोचारण के द्वारा यहां पर बतला रहे हैं, गोचारण करने के लिए गोप वेश चाहिए। कृष्ण मुकुट पहन करके सोने का, तीर धनुष लेकर और हाथ में गदा चक्र पद्म लेकर के गोचारण करने के लिए जाएंगे, ये शोभा होगा? वो तो वन्य वेश में जैसे पेंक हाथ में ले लिए मोर मुकुट और फूलों के ही सब हार बाजी बंदे इत्यादि वैजयंती माला, गोप वेश में ही वो सक्षम, इसलिए गोचारण। और दूसरे इस रूप में नहीं होगा। इसलिए मैं जाकर के कह देना, मैं इसी वेश में, इसी गोपाल वेश में मैं आऊंगा और उनको सुखी करूंगा। अतः पूर्वोक्त दान अकर्तव्य इत्यादि पर्यवसित, इसलिए ये जो कह रहे हैं ये अकर्तव्य ही हुआ। बलदेव जी ने कहा आप जाना नहीं चाहते, केवल बहल बहका देते हैं। इसलिए हीना माया कल्प समा बहुआ, उनके ये सब केवल बात ही कहा, उनके विरह इत्यादि को उपशम नहीं कर सके। ता नाविदन मई अनुसंग बद्ध धीय स्व आत्मनम दम्भ खेदम यथा समाधव मुनियो अब्धिताये अब्धितोये नद्दा प्रविष्ट इव नाम रूप। जिस प्रकार से मुनि समाधि दशा में नाम रूप कुछ भी अपना अवगत नहीं होते, अथवा नदियां समुद्र में मिलने के बाद में ये गंगा है, ये जमुना है, ये सरस्वती है, अब नाम रूप और अलग से पानी उनका नहीं रहता समुद्र में, नाम रूप सब कुछ वहीं पर समाप्त हो जाता, जहां मिला हिमालय से लेकर गंगा सागर तक गंगा का नाम गंगा है, भगीरथ है, जाह्नवी है, सूरसरी है, किंतु जब ही समुद्र में मिल जाती है अब फिर उसका नाम समुद्र में आता है, मिल जाता है। जैसे साधु लोग मुनि लोग समाधि दशा में अपने शरीर का नाम और यह रूप सब कुछ भूल जाते हैं, उसी तरह से ब्रजंगनाएं भी हमारे प्रति दृढ़ आसक्ति के योग से अपने देह इस लोक परलोक सब कुछ को खुल गए। योगियों से भी बहुत बड़ी ऊंची स्थिति। साधक भी क्रमशः भगवान चिंतन करते करते ये सब क्रमशः भूल जाएगा, बाहरी लौकिक व्यवहार इत्यादि सभी कुछ। हम लोग इतने दिनों में कितना भूले हैं ये विचार करो। अपना बाहरी स्थूल रूप, बाहरी गुण, बाहरी अभिमान, ये सब कितने भूले हैं। तो तब से साधन क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग साधन? देखा जाए तो हम लोग ठीक साधन नहीं कर, सब कुछ भूल जाएगा। कोई अब स्वार्थ नहीं रह जाएगा, कोई दुर्गुण नहीं रह जाएगा, और अपने स्वरूप का कुछ चिंतन होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वही सब कर रहे हैं, उसी की त्रुटि हो रही है। स्थूल विचार शरीर सब कुछ, आत्मा का कुछ भी साधन जैसा होना चाहिए नहीं। यदि कहो जो हम लोग को कहां सुजोग है, कहां सुजोग है, खाते हैं पीते हैं।